बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। किंतु इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान बाइबल अध्ययन की ओर लगाएं, मन की तैयारी के लिए प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, अभी है मेरे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों पहले कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जो नए नियम की पुस्तक में से है, और आज हमारे अध्ययन का यह अंतिम भाग होगा। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को इस बात को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और जी उठने के बाद वह स्वर्ग में चला गया, और हम भी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसकी तरह रूपांतरित हो जाएंगे। इसी देह के साथ नहीं, परंतु बदले हुए देह में हम उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उसके अंतिम उपदेश को। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सब श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिताजी, आप उनके जीवन से बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि हम इस बात को जान सकें कि आप हम सबसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारे हर एक आवश्यकताओं को समझते और जानते हैं और आप चाहते हैं कि हम शांति प्राप्त करें। हाँ प्रभु, आज के इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं, आप हम सबकी सहायता कीजिए। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, एक एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम देखेंगे अंतिम उपदेश के विषय में। यह अध्याय विविध विषयों का संकलन है। पहले तो पौलुस यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए एकत्र भेंट का उल्लेख करता है, उसके पश्चात वह अन्य विषयों की चर्चा करता है, अवसर और विरोध, जागते रहना और प्रार्थना करना, कलीसिया का आचरण, शिक्षाओं की अग्नि परीक्षा तथा कलीसिया संबंधित विषय। यहाँ परिदृश्य संपूर्ण कलीसिया का है। तो हम देखेंगे पद 1-4 में भेंट के बारे में, पद 5-9 में व्यक्तिगत है जिसमें पौलुस अपनी योजनाओं का उल्लेख करता है, और पद 10-24 में पौलुस भ्रष्ट नगर में रहने वाले विश्वासियों के बारे में चर्चा करता है। आइए सबसे पहले देखें भेंट। पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय उसके 1 पद में, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस इस अध्याय के आरंभ में दान एकत्र करने की चर्चा करता है। अब आप सोचेंगे कि मसीही विश्वास के महानतम या महिमामय अंगीकार के बाद पौलुस कहेगा, भाइयों हम स्वर्ग में हैं, अब हम बादलों में ही रुके रहें। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बत्ती बुझा दी। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत नीचे गिर गए। जी हाँ, वह यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए भेंट एकत्र करने की चर्चा करता है। कुछ धर्मजनों का कहना है कि हमें पैसों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए, यह संसारिकता है, आपको केवल आत्मिकता की ही चर्चा करना चाहिए। जी हाँ, ये लोग इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि यह विषय उनके लिए असमंजस का कारण है। परंतु पौलुस मसीही दान की विधि प्रतिपादित करता है। ध्यान दीजिए, अब यदि आपके पास बाइबल हो तो ध्यान से सुने क्योंकि मैं व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ूंगा। सब्त के दिन तुझ में से हर एक अपना दशमांश और चंदा दे, जिससे कि मेरे आने पर भेंट न ली जाए। ऐसा भी हो कि जब मैं आऊं तो विशेष भेंट ली जाए या निवृत्ति भेंट ली जाए। अब कोई कहेगा कि मैंने तो वैसा नहीं पढ़ा जैसा लिखा है। नहीं, मैंने वैसा ही नहीं पढ़ा है, परंतु मैंने वैसा पढ़ा है जैसा आज हो रहा है। अब आइए हम पढ़ें जैसा पौलुस ने लिखा है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। मित्रों, ध्यान दीजिए, सप्ताह के पहले दिन, यदि आप परमेश्वर की आराधना के लिए सप्ताह के पहले दिन एकत्र नहीं होते हैं तो आप उस दिन भेंट लाते हुए एकत्र हों जो आराधना का भाग है। यह निश्चय ही हास्यास्पद है। पौलुस कहता है कि सप्ताह के पहले दिन अपनी अपनी भेंट लाओ, तो यह वह दिन है जब कलीसिया प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए एकत्र होती थी। यीशु का पुनरुत्थान सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात पहले दिन हुआ था, सप्त के दिन नहीं। ध्यान दे, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। वह दशमांश और चंदे के बारे में कुछ नहीं कहता है, उन्हें परमेश्वर की आशीषों के अनुसार कुछ अलग करके रखना चाहिए। मेरी कलीसिया के एक सदस्य के पास कुछ फैक्ट्रियां हैं। वह धनवान मनुष्य था और उसके पास पशु फार्म थे जहां एक शिकार करने और मछली पकड़ने वाले लोग जाते थे। वह मुझसे बार बार कहता था कि मैं दशमांश पर प्रबोधन क्यों नहीं करता हूं। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे दशमांश पर क्यों प्रबोधन करना है? उसने कहा, क्योंकि यह बाइबल आधारित दान है। मैंने सहमति में कहा, जी हाँ, यह पुराने नियम की व्यवस्था है, परंतु अनुग्रह के अधीन होने के कारण मेरे विचार में दशमांश देना दान नहीं है। अतः उसने पूछा, तो फिर कैसे करना चाहिए? मैंने यह पद उसके सामने पढ़ा, अपनी आमदनी अर्थात आशीष के अनुसार। यह बहुत पुरानी बात है, जब मुद्रा स्फीति बहुत नीचे थी। मैंने उससे कहा, यह अति विचित्र बात है कि कोका कोला अब भी बिक रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, परंतु हमारी कलीसिया के कुछ सदस्य दशमांश देने की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर उनसे दशमांश की मांग करता है। जी हाँ, कुछ लोगों की आर्थिक दशा अच्छी है और उन्हें अपनी आमदनी के अनुसार देना आवश्यक है। उन्हें दशमांश देकर ही नहीं रुक जाना है। कहने का मतलब है कि आप उससे अधिक दे सकते हैं, संभवतः उन्हें आधा भाग देना चाहिए। उसने फिर कभी नहीं कहा कि मैं दशमांश पर प्रचार करूं। मेरे प्रियो, वह दशमांश तो दे रहा था, परंतु अपनी आमदनी के अनुसार नहीं दे रहा था। लिखा है, मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस दान का दबाव डालकर उनसे व्यक्तिगत भेंट के समय को हर्ष से रहित करना नहीं चाहता था। मुझे अपने कलीसियाई सेवा के समय मुझे कभी कभी दान देने पर उतना ही ध्यान देना होता था जितना नए विश्वासियों पर देना पड़ता था। पौलुस हमें समझाता है कि दान कैसे एकत्र किया जाए। हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय के 3-4 पद में, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। जी हाँ, पौलुस ने उनसे आग्रह किया कि एक समिति बना दी जाए जो उसके साथ दान लेकर यरूशलेम जाए। अच्छा होगा कि एक से अधिक जन दान का उत्तरदायित्व संभाले। मेरे मित्रों, एक ही मनुष्य के हाथों में पैसा रखना खतरनाक हो सकता है। क्या कहने का अर्थ यह है कि एक विश्वासी की ईमानदारी पर संदेह किया जाए? संभव है। ईमानदार मनुष्य के साथ भी परीक्षाओं का संकट होता है। पौलुस पैसों को संभालने की अति उत्तम विधि सुझाता है। वह अति व्यवहार कुशल विधि सुझाता है। देखिए, यहाँ पौलुस उनकी उदारता को सराहता है। मसीही दान के लिए प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान देना बड़ी ही रोचक बात है। वह उसे एकत्र धनराशि कहता है। इसके साथ ही वह उनकी उदारता का उल्लेख करता है, जिसके मूल यूनानी शब्द का अनुवाद अनुग्रह भी किया गया है। मेरे मित्रों, रोमियो के पत्र 15 अध्याय के 26 पद में जो यूनानी शब्द दान के लिए काम में लिया गया है, उसका अर्थ है सहभागिता। और दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 5 पद में प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ है अधिवक्य या आशीष। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 12 पद में दान के लिए काम में लिए गए यूनानी शब्द का अर्थ है प्रबंध या सेवा। और तब प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 17 पद में इसे यूनानी भाषा में दया का काम कहा गया है। ये सब शब्द प्रभु को दिए गए दान के लिए काम में लिए गए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ दान शब्द का अभिप्राय अनुग्रहित दान से है। परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दी है, क्या आपका दान जो आप प्रभु को देते हैं उसे उदारता कहा जा सकता है? लय व्यवस्था की पुस्तक में दशमांश देने के निर्देश हैं। आरंभ में इसराइल परमेश्वर के राज्य में था और इसराइलियों द्वारा दिया गया दशमांश सरकार और मंदिर को संभालने के काम में आता था। दशमांश कुल सरकारी आय का 30% भाग होता था। इससे हमें ज्ञात होता है कि पुराने नियम में इसराइल व्यवस्था की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता था। आपके विचार में अनुग्रहित दान कितना होना चाहिए? आइए देखें व्यक्तिगत विषय। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं, तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना। ध्यान दीजिए, जिस ओर मेरा जाना हो, इससे प्रकट होता है कि पौलुस स्वयं ही नहीं जानता था कि वह कहां जाएगा। आपके कहने का अर्थ क्या यह है कि अन्य जातियों के ऐसे महान प्रेरित के पास प्रभु का नक्शा नहीं था कि उसकी यात्राओं का विवरण उसमें से हो कि उसे कहां कहां जाना है? जी नहीं, उसके कहने का अर्थ था कि वह जहां भी जाता है प्रभु ही उसे वहां ले जाता है। पौलुस अनिश्चित स्थिति की महिमामय दशा में था, वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। मेरे लिए तो यह एक महान सांत्वना की बात है क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या है। मेरे मित्रों, मसीही सेवा में कुछ लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि उनके पास अग्रिम 5 वर्षों के कार्यक्रम है कि वे कहां जाएंगे और क्या करेंगे। मुझे यह सुनकर चिंता हो जाती है क्योंकि मैंने प्रभु से ऐसे निर्देश कभी नहीं पाए हैं और मुझे यह सोचना कदापि स्वीकार्य नहीं कि उनके पास प्रभु के साथ सीधा संपर्क प्राप्त है जो मुझे प्राप्त नहीं है। अतः जब मैं पढ़ता हूं कि पौलुस भी नहीं जानता था कि उसे अगला कदम कहां रखना है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। पौलुस को और मुझे भी परमेश्वर यात्रा सारणी नहीं देता है, वह हमें दिन प्रतिदिन ले जाकर या लेकर चलता है। हम बड़ी महिमा में अनिश्चित हैं। मेरे प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि वह कुरिन्थ जाना चाहता है परंतु प्रभु अनुमति दे तब। क्या हमें योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है? निसंदेह हमें यथासंभव योजना बनाना चाहिए, परंतु हमारी योजना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संशोधित हो। हमें उनमें परिवर्तन लाने के लिए तैयार होना है। पौलुस के पास अपनी प्रचार यात्राओं की अपरिवर्तनीय समय सारणी नहीं थी, वह वैसे ही चलता था जैसे प्रभु उसे चलाता था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे उसे दूसरी प्रचार यात्रा में अपने गंतव्यों से अलग भेजा। वह एशिया जाना चाहता था तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे यूरोप भेजा। उसकी योजना में यूरोप यात्रा नहीं थी, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में यात्रा करता था। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा। यह उसकी योजना के अनुसार था। तब आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 9 पद में, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मित्रों, यह एक अद्भुत पद है जिसे मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में देखा है। फिलाडेल्फिया को प्रभु का संदेश के साथ रखा गया है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। और पौलुस कहता है मेरे लिए वहां बड़ा, अर्थात एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। ये दो पद मैंने परमेश्वर की सेवा में सच पाए हैं। आज भी यह सच है कि विरोधी बहुत से हैं। वह प्रत्येक जन जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होता है उसके विरोधी बहुत से होते हैं। यह अनुभव पौलुस का तो था ही, मेरा भी है, और आप जो सेवा करते हैं शायद आपका भी हो। तथापि जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वह महान है। वह चाहता है कि उसका वचन हर एक मनुष्य सुने। अतः हम पौलुस को महिमा से पूर्ण आनंद में देखते हैं। वह परमेश्वर की इच्छा में अति प्रसन्न है। यदि प्रभु चाहेगा तो वह कुरिन्थ अवश्य जाएगा। मेरे मित्रों, आइए हम देखें व्यक्ति विशेष। अब हम कुछ विश्वासियों के विषय पौलुस की चिंता को देखते हैं। ये विश्वासी कुरिन्थ की सड़कों पर निकलते थे, भ्रष्ट एवं वे विचारी मनुष्यों के स्थान में वे आज की पीढ़ी से कहीं अधिक योनाचार का ज्ञान रखते थे। तथापि प्रभु यीशु के अनुयायी और भक्त भी उन सड़कों पर विचरण करते थे, वे संसार में निष्कलंक थे। पहला क्रंथियों के पत्री 16 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है, इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जोह रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। वे तिमोथियुस को तुच्छ क्यों समझते थे? पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। जी हाँ, वह कुरुंद की कलिसिया से कहता है कि तिमोथियुस अभी युवक अर्थात नौजवान ही है, परंतु वे उसका मान रखें। वह परमेश्वर के वचन का एक महान प्रचारक था। पहला कुरुंतियों के पत्री 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि कुरिन्थ की कलीसिया पौलुस, कैफा और अपोलुस के पक्ष में विभाजित थी। पौलुस अपोलुस से प्रेम रखता था। उसने स्पष्ट कहा है कि वे दोनों प्रभु की सेवा में सहकारी थे। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि अपोलुस कुछ समय पश्चात उनके पास आएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आज हमारे लिए ये शब्द कैसे प्रासंगिक हैं? मित्रों, ध्यान दें कि हम कैसे जीते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, हे भाइयों, तुम स्तेफनुस के घराने को जानते हो कि वे अख्या के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। यह एक महान सेवा की, वे पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते थे। वह उनसे आग्रह करता था और आग्रह करके विनती करता है कि आगंतुकों की या अतिथियों की सेवा करें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, मैं स्तेफनुस और फुर्तुनातुस और आइकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। मेरे मित्रों, उन्होंने पौलुस के पास पत्र लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिनके लिए पौलुस कहता है कि वे तीनों ऐसे उत्तम मनुष्य थे कि संपूर्ण कलिसिया का नाम ऊंचा करते थे। तब आगे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 18 पद में, उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। तब पौलुस कहता है कि उनके लौट आने पर उन्हें धन्यवाद कहें। पहला कुरिन्थियों 16 के 19 पद में आगे लिखा है, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, इसी स्थान पर उनमें से अनेकों ने मसीह को ग्रहण किया था। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है, सब भाइयों का तुमको नमस्कार, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मेरे प्रियो, यह चुंबन लेने की अनुमति है, परंतु पवित्र चुंबन के अधिकांश चुंबन पवित्र नहीं होते हैं और लोग इसका गलत अनुवाद या अर्थ निकालते हैं। इसलिए पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि पवित्र चुंबन क्या है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। पौलुस ने इस पत्र को लिखवाया था, अतः वह उस पर हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नमस्कार। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो, हे हमारे प्रभु आ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु ने पत्रस से पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने पत्रस से यह नहीं पूछा था कि क्या वह उसका फिर इनकार करेगा। उसने केवल यही पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मित्रों, यही आज विश्वासी की अग्नि परीक्षा है, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? पौलुस कहता है कि यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब के साथ रहे, आमीन। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आप पवित्र जनों से भी प्रेम रखेंगे। पत्र का समापन प्रेम की पराकाष्ठा पर होता है। क्या आज आप सचमुच में प्रभु से प्रेम रखते हैं? यदि आप सचमुच में प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आप उसके पवित्र लोगों से प्रेम रखेंगे। आप उनसे घृणा और नफरत नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, लेकिन आज इस बात का स्पष्टीकरण पौलुस हमें देता है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वे उसके लोगों से भी प्रेम रखेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्या आज आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं? आज आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती है, एक निर्णय लेने का समय है। आइए आज हम कहें, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, और इसका प्रमाण हम पवित्र जनों से प्रेम रखने के द्वारा से लोगों को दिखा सकें, अपने कलीसिया में अपने लोगों से प्रेम कर सकें। जी हाँ, आज प्रभु चाहता है कि हम उसके नमस्कार को ग्रहण करें, पौलुस के नमस्कार को ग्रहण करें। क्या आज आप चाहते हैं कि आप भी अपने प्रेम को अपने लोगों तक दर्शाएं, पहुंचाएं? यदि हाँ, तो आज उसके पास आएं और उससे कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मैं भी अपने प्रेम को पवित्र जनों तक पहुंचाना चाहता हूं, आपसे प्रेम करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। मेरे मित्र, हो सकता है कि आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, हो सकता है कि आप प्रेम से घृणा करते हैं, लेकिन आज आप इस बात को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उससे प्रेम करें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें और आने वाले अध्ययन तक अपने जीवन में आप प्रभु की निकटता में बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
का धन्यवाद।
क्षणों में